मेरे घनिष्ठ मित्रों नमस्कार। फ्रेंड्स, मैं नहीं जानता कि आप सब कौन बनेगा करोड़पति देखते हैं या नहीं देखते हैं, और देखते भी हैं तो किस दृष्टिकोण के साथ देखते हैं, लेकिन मैं अपनी पत्नी और अपने बारे में जरूर बता सकता हूं कि मेरी पत्नी को यह प्रोग्राम बहुत पसंद है, और जब यह प्रोग्राम खत्म होने को होता है तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे कोई बहुत बड़ी चीज उनके जीवन से जा रही हो। और खासकर अमिताभ बच्चन जी जिस तरीके से इस कार्यक्रम का संचालन करते हैं वह उन्हें बहुत अच्छा लगता है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि कौन बनेगा करोड़पति का मैं फैन हूं और मैं अपनी पत्नी की तरह ही इसे बहुत ज़्यादा पसंद करता हूं, और इसके बिना मुझे ऐसा महसूस होता है कि जब यह नहीं रहेगा तो फिर जीवन में सूनापन आ जाएगा। लेकिन हाँ, मैं बीच बीच में देखता जरूर हूं, और उसका कारण यही नहीं है कि मेरी पत्नी देख रही है तो मुझे भी देखना ही पड़ेगा, नॉट एट ऑल। उसका कारण यह है कि इसमें जो पात्र आते हैं, जो करेक्टर्स आते हैं, और उन करेक्टर्स के साथ अमिताभ बच्चन जी जिस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, तो इनके जो चरित्र होते हैं उनकी परतें खुलती चली जाती हैं, और मुझे ऐसा महसूस होता है व्यक्तिगत तौर पर कि ये जो सामने करेक्टर बैठा हुआ है जिससे अमिताभ बच्चन जी बात कर रहे हैं, उनसे बिना मिले ही मैं मिल रहा हूं। कितनी बड़ी बात है, बिना मिले ही मिल रहा हूं, और इससे मुझे व्यक्ति को समझने में, या कह लीजिए व्यक्ति के चरित्र किस किस तरीके के हो सकते हैं, वो किस किस एंगल से चीजों को सोच सकता है, इसकी जानकारी मिलती है। तो आप यूं कह लीजिए कि मेरे लिए यह एक अच्छा खासा अध्ययन का विषय बन जाता है, मैं इसलिए देखता हूं। पिछले सप्ताह अगर आपने कौन बनेगा करोड़पति देखा हो तो उसमें एक करेक्टर आई थी, एक पात्र आई थी, जो जहां तक मैं मुझे याद आ रहा है उत्तराखंड से थी, यंग थी, और उनका जो प्रोफेशन था वह टीचिंग का था, यानी कि वो उत्तराखंड के किसी स्कूल में टीचर थी। बहुत अच्छे तरीके से वो कार्यक्रम कर रही थी, प्रश्नों के जवाब दे रही थी, लेकिन एक प्रश्न का जो उन्होंने जवाब दिया उसने मुझे सोचने के लिए मजबूर कर दिया, और मैं इस बात के लिए उनकी प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने इतनी ईमानदारी के साथ जवाब दिया। अमिताभ बच्चन जी ने उनसे पूछा था कि ऐसी कौन सी तीन चीजें हैं जिन्हें आप अपनी जिंदगी से जाने नहीं देना चाहेंगे, यानी कि ऐसा लगेगा कि अगर ये जिंदगी से चली गई तो फिर जिंदगी ही क्या रह जाएगी, ऐसी तीन चीजों के नाम बताइए। कि आपको यह कार्यक्रम याद आया, चलिए कोई बात नहीं, नहीं भी याद आया है तो बात बन जाएगी। तो उन्होंने एक तो अपनी मां के बारे में बताया कि मैं मां को खोना नहीं चाहती, और उनकी मां उस प्रोग्राम में आई हुई थी, बैठी हुई थी, यानी बहुत ही सौम्य महिला लग रही थी। ठीक है, माता पिता के बारे में, पेरेंट्स के बारे में हम सब जनरली यही महसूस करते हैं, तो उन्होंने अपनी माँ का नाम लिया, उनके भाई भी आए हुए थे लेकिन उन्होंने माँ का नाम लिया। ठीक है, क्योंकि माँ जिस तरह से परवरिश करती हैं वो यूं कह लीजिए कि हमारे जीवन का आधार ही होती है। इसके बाद जो उन्होंने दूसरी वस्तु का नाम लिया उसने मुझे चौंका दिया, और सच पूछिए तो उन्होंने चौंकाने के साथ ही साथ मुझे एक विषय भी दे दिया, सोचने के लिए मजबूर कर दिया। हालांकि इस विषय पर मैंने पहले भी बहुत सोचा है, ऐसा नहीं है, शायद मैंने अपने लाइफ मैनेजमेंट में कभी लिया भी है, लेकिन मुझे लगा कि इस पर फिर से बात की जा सकती है क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है। तीसरी चीज वो नहीं सोच पाई। बाद में फिर अमिताभ बच्चन जी ने मजाक मजाक में कहा कि आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं, तो चलिए वो तो बात खत्म हो गई। लेकिन जो दूसरी चीज उन्होंने बताई वह चीज थी मोबाइल। क्या आप सुनकर चौंक गए? नहीं चौंके होंगे, हो सकता है कि अगर आप मोबाइल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल ना करते हो तो चौंक भी गए हों, लेकिन आज के जनरेशन को अगर आप ये बताएं तो वो बिल्कुल चौंकेगी नहीं, बल्कि बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि बिना मोबाइल के हम रह कैसे सकते हैं। कल्पना करके देखिए कि मोबाइल उनकी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा बन चुका है, और यह केवल उनका ही नहीं, इसलिए मैं उनकी ईमानदारी की तारीफ करूंगा कि वो बिल्कुल सार्वजनिक मंच पर यह बात स्वीकार कर रही हैं। और आप देखिए वो खुद में टीचर हैं, और अगर टीचर सार्वजनिक मंच पर यह बात स्वीकार कर रहा है तो सीधी सी बात है कि अगर उसके स्टूडेंट मोबाइल से चिपके हुए हैं तो वह उसे गलत नहीं लगेगा, क्योंकि यदि वह मेरे जीवन का हिस्सा है तो दूसरों के भी जीवन का हिस्सा हो सकता है, होना ही चाहिए। दोस्तों, इस तरीके से मोबाइल ने हमारी चेतना पर, हमारे वक्त पर, हमारी प्राथमिकताओं पर, हमारे जीवन पर अपना जबरदस्त रूप से अधिकार कर लिया है कि हम उसके बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। हम लोग तो उस पीढ़ी के लोग हैं जबकि अगर किसी जगह भेजते थे कि हम खुशी खुशी यहां पहुंच गए हैं तो पता लगा कि हम वापस लौट करके अपने ही द्वारा लिखी गई चिट्ठी को रिसीव कर रहे होते हैं। दोस्तों, मुझे लगता है कि इस पर हम सबको विचार करना चाहिए और देखना चाहिए कि यह मोबाइल, जो मात्र एक माध्यम है, कम्युनिकेशन का एक छोटा सा माध्यम है, उसने किस तरीके से हमारे जीवन में इतनी जबरदस्त रूप से घुसपैठ कर ली है, हमें इतना ज्यादा अपना गुलाम बना लिया है कि उसके बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। हम सबको अपना मूल्यांकन करना चाहिए, क्योंकि मैं ये मान करके चलता हूं कि चाहे वो हमारी चेतना हो या हमारा वक्त हो, ठीक है, मोबाइल एक माध्यम है तब तक तो ठीक है, अदरवाइज मुझे ये पॉइजन से कम मालूम नहीं पड़ता है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, जी हां, बिल्कुल जहर जैसा है। आप सब भी इस पर विचार कीजिए और अपने अपने ढंग से इसे अपने जीवन में स्थान दीजिए कि कितना स्थान देना है। यह नहीं कि सब कुछ उस पर छोड़ दें कि तुम हमारे पूरे के पूरे जीवन पर अमर बेल की तरह छा जाओ और उसके नीचे नीचे हम सूख कर नष्ट हो जाएं। तो दोस्तों, अब इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।